आखिरी टॉपिक आज के सबक का, किताब अल्लाह के साथ यहूद ने क्या किया? बोलिए, आप इतनी देर से बात हो रही है, वरा जहूरी, पीछे पीछे डाल दिया, हमें कोई केयर नहीं। तो जब उसको पीछे डाला तो वत्तबाउ मा तत्लु शयातीन वाला मुल्क सुलेमान, और वो यहूद इन खुराफात की पैरवी में लग गए जो शयातीन सुलेमान के दौरे हुकूमत में पढ़ते पढ़ाते थे। ये फितरत का असूल है, वैक्यूम कहीं नहीं रहता। जब आप एक चीज को निकालेंगे तो उसकी जगह पे कम से कम वहां क्या चीज होगी? जिन्होंने साइंस पढ़ी वही बता दे। एयर, शाबाश, हवा, जो खाली बर्तन है, जैसे अगर ये ग्लास है ना, तो अगर इसमें से पानी निकाल दूं तो मैं और आप क्या कहेंगे कि ग्लास खाली है। किसी साइंटिस्ट को बुलाए और दिखाए, वो कहेगा खाली नहीं है, इसके अंदर एयर है। फिर वो जो सक्शन लगा के वैक्यूम करके सील करते हैं ना, तो वो करते क्या कि इसकी हवा को सक कर लेते हैं और वैक्यूम कर देते हैं, कोई जगह खाली नहीं रहती। अब जब दिल से किताब कुरान ये सब निकला तो उसकी जगह खुराफात आ जाती हैं। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी कुछ इस तरह की खुराफात आई हुई है, ये सोचने की बात है। उस दौर में तो वो थे, कहानी तो आपको सुनाती हूँ अभी थोड़ी सी, लेकिन हम साथ साथ अपना मुशाहिदा करते जाएं कि सबने नहीं छोड़ा लेकिन काफी सारों ने छोड़ दिया। आज उस चीज से पीछे हो गए, पसे पुश डाल दिया, और उसके बाद क्या किया? इसको छोड़कर लगे क्या? अच्छा चले ठीक है ना, कुरान छोड़ा तो कोई अच्छी चीज ही लेते, ये भी होता है, नोट कीजिएगा बात। खुदा ना खास्ता, सिर्फ मिसाल देना चाहती हूँ, क्या हम कुरान का ये कोर्स छोड़ देते हैं? तो चलो इसको छोड़कर कोई कुरान से रेलेवेंट ही कोई चीज सीखने लग जाए, कोई हदीस सीख लें, हमसे नहीं सीखते किसी और से सीख जाए, मिसाल है, इतने ही दिन इतने ही वक्त में, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, सीखते रहो। कभी मुझे कोई कहता है ना कोई नहीं आ रहा तो मुझे दुख होता है, फिर कोई कभी कहता है वो फलां जगह जा रहा है, मगर चलो शुक्र है कहीं कुरान ही पढ़ने गया ना, कोई ये तो नहीं कि कोई गलत चीजों में खो गया, कोई गाने तो नहीं सीखने लग गया, इट्स ओके। लेकिन होता क्या है कि मा तत्लु शयातीन, कुरान की महफिल से उठने वाला, इस्लाम को छोड़ने वाला, दीन को छोड़ने वाला अमूमन शैतानों के पीछे लग जाता है। यही उनके साथ हुआ, वो कैसे और क्या, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे आयत को आगे लेकर। कहाँ? अला मुल्क की सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में। यहाँ जो मुल्क है ना, ये दौर के मानों में, टाइम ऑफ एरा यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत करते थे। फिर क्या हुआ? वमा कफर सुलेमानु, और सुलेमान ने कुफर नहीं किया, बल्कि वलाकिन शयातीन कफरू, बल्कि शैतानों ने कुफर किया। कैसे कुफर किया? हाईलाइट कीजिएगा, ये इस आयत का पिन पॉइंट है। युअल्लिमूनन्नास सिहर, वो लोगों को जादू की तालीम देते थे। अच्छा कैसे? वो इस इल्म के पीछे हो लिए, कौन सा? वमा उन्जिलाल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, और वो पीछे लग गए उस इल्म के जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत नाम के दो फरिश्तों पर उतरा था। कैसे थे वो दोनों? वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितना, वो दोनों फरिश्ते किसी को सहर नहीं सिखाते थे जब तक कि वो पहले साफ तौर पर लोगों को आगाह न कर देते। क्या? कि हम तो महज आजमाइश का जरिया हैं, लिहाजा फला तकफुर। इसको यहाँ वन लिख लीजिए या ए लिख लें, आगे जाके इस पे बात होती है कि देखो कुफर ना करो। किस चीज को यहाँ कुफर कहा जा रहा है? जादू करने कराने को, ठीक है। अब जादू के दलायल हम नोट कर रहे हैं कि जादू कैसे कुफर है या हराम है, ये एक उसकी जगह आ गई है आपके सामने कि जादू क्या है, कुफर है, लिहाजा तुम कुफर ना करो। और क्या? फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजिही, और वो इन लोगों से सीखते भी वो चीज़ थे जिससे वो शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दें। यानी कोई अच्छी चीज़ नहीं सीखते थे, जादू भी सीखते तो नुकसान वाला जादू। जैसे आप देखिए कि हर चीज़ का एक फ़ायदे वाली चीज़ भी होती है, नुकसान वाली भी होती है। छुरी है, आप उससे गोश्त भी काट सकते हैं, सब्जी भी काट लें, और आप उससे किसी की गर्दन भी काट दें। जादू खुद ही बुरा था, लेकिन उसकी और बुरी किस्म के बदतरीन काम उससे करवाते थे, और वो क्या कि शौहर और बीवी के बीच में जुदाई डलवाते थे। इतना सब कुछ सुन के इंसान डरता है, हाय जादू, जादू वाले क्या ना कर दे। तो कहा नहीं, वमा हम बिदारीन बिही मिन अहदिन, वो नहीं जरर दे सकते किसी एक को भी, हाँ मगर इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इसमें तसल्ली दे दी कि फिक्र ना करो, वो जादू करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन जादू का होना या जादू के जरिए से नुकसान होना ये अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल-मुहैमिन है। वह यतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वमा यदुर्रुहुम वला यनफअहुम, तकरार है कि वो चीज़ सीखते थे जो उनको ज़रर दे, ना कि वो सीखते जो उनको फ़ायदा दे। कि चलिए जादू के जरिए से सड़कें बनवा देते, फायदा ही होता, जादू के जरिए से तलाक होते होते घर को बचा के सुलह कराते, फायदा ही होता ना, तलाक के जरिए लोगों के अंदर से गुर्बत दूर करते, फायदा होता। ये नहीं किया, बल्कि नफे की बजाय नुकसान वाली चीजें करते। यहां से पता चलता है कि जादू किसी भी नीयत से किया जाए, फायदे की नीयत से या शर की नीयत से, होता उससे नुकसान ही है। चाहे आप ये कहें कि मुझ पे किसी ने किया है, या मैं उसके ऊपर कर रही हूं, या किस वजह से कर रही हूं, लिहाजा जरर लेते हैं। हालांकि वलकद अली मोला मनिश्तराखिलाक, इस पे नंबर टू लगा ले, पहले वन था ना, फला तकफर, यानी जादू हराम है। उसका एक वजह क्या है कि अल्लाह ने इसको कुफर कहा है, और दूसरा कि जिसने जादू सीखा सिखाया ऐसा काम किया तो उसका आखरत में कोई हिस्सा नहीं है, अल्लाह ताला उसको जन्नत नहीं देगा। वला भी समाशरो बिही अनफुसहुम, कितनी बुरी चीज थी जिससे उन्होंने अपनी जानों के इवज खरीदा। लव कानु यालमून, काश के वो जानते और इसको समझते। ये है वो एक आयत, और अगली आयत तो तौबा की आयत है। सिर्फ इस एक आयत में कुरान ने जादू का पूरा मजमून समेट दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगी, बैकग्राउंड को साथ लेते हुए। पीछे बनी इसराइल की किस्सा चल रहा है। बनी इसराइल कौन थे? नबियों की नस्ल से थे, हजारों नबी इनके पास आए, और जब नबी आते हैं तो या किताब लाते हैं, या सहीफा लाते हैं, या पिछली ही किताब की तरवीज करते हैं। इनको क्या करना चाहिए था? उन सारे अंबिया कराम के नक्शे कदम पे चलते, उन किताबों को पढ़ते पढ़ाते, आज दुनिया में बैठ के वाकई जन्नती होने के दावेदार बन जाते, ठीक है ना? इन्होंने क्या किया? रसूल की पैरवी छोड़ी। नुकसान क्या हुआ? शैतान की पैरवी शुरू हो गई। सीधा रास्ता आप छोड़ते हैं ना, तो आप गलत रास्ते को शुरू कर चुके होते हैं, राइट? जाना लेफ्ट था, ले राइट लिया, या जाना राइट पे था, ले लेफ्ट लिया, क्या किया? वत्तबउ मा तत्लु शयातीन, अल्लाह ताला की किताब को छोड़ा, नेकी को छोड़ा। हुक्म पीछे क्या था? दो दफा पे कायद पढ़े, अगर आप में से कोई उसका जवाब दे दे। खुजू मा आतैनाकुम, दो दफा पढ़े ना, पकड़ो मजबूती से जो हमने तुमको दिया है। इन्होंने क्या किया? वत्तबउ मा तत्लु शयातीन, क्या ये मेरे ऊपर तो नहीं आता? हर एक खुद से पूछे। अल्लाह ने मुसलमानों को भी हुक्म दिया हुआ ना किताब को पकड़ने का, पकड़ो, कहाँ लिखा है? बस चलते रहें, बहुत जल्दी आ जाएगी आयत। वा तसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रकू, मजबूती से अल्लाह की किताब को पकड़ लो, इस रस्सी को पकड़ लो, और फितनों में ना पड़ो, खराबियों में ना पड़ो। तो लिहाजा क्या पता चला कि ये लोग इन चीज़ों में आए, नतीजा क्या हुआ? किताब छूट गई, एक चीज़ गई दूसरी आ गई। नौरानी इल्म छोड़ा तो जुल्मानी इल्म पे आ गए। किताब नूर होती है, तो रात भी नूर थी, कुरान भी नूर है। ये जुल्मानी, अंधेरे, गंदे, सिफली इल्म, नाम ही देखिए ब्लैक मैजिक, और कुरान क्या है? नूरन, रोशनी। ऐसे लोग काले दिल के होते हैं। अच्छा, ये छोड़ना कैसे होता है? ऐसे पकड़ के छोड़ दिया, सारी किताबें घर से निकाल दी, हमें नहीं पढ़ना? नहीं, बल्कि दिली लगाव खत्म हो गया किताब से, और उसकी जगह पे फिक्शन आ गया। आज भी मुसलमानों का हाल नहीं, डाइजेस्ट, खवातीन डाइजेस्ट, मैं इनके खिलाफ या हक में नहीं हूँ, सिर्फ नाम सुने मैं तो बोल रही हूँ। कितने शौक और तपाक से पढ़ते हैं हम ये मैगजीन्स, फैशन मैगजीन, और अल्लाह माफ करे जो यहाँ मैगजीन घरों में आते हैं वो तो पता नहीं कैसे कोई देख लेता है, और हमने कहाँ से जाए होते हैं, कहाँ पढ़े होते हैं मैगजीन? बाथरूम में, कभी सोचा आपने? अल्लाह ना करे मौत अंदर आ जाए, तो क्या होगा, और कितनी देर लगाएंगे उस मैगजीन को देखने में, और बैठे कहाँ हैं कि जहाँ रहमत का फरिश्ता भी नहीं आ सकता। आज घरों में क्या इतने कुरान हैं जितने मैगजीन हैं, पुराने नए जमा करके गिने इस वीकेंड पे। हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ आपको काम देना चाहती हूँ जिससे आप अपनी घरदारी भी ठीक करें, तो इस वीकेंड का यही काम लिख लें। पूरे घर में, रद्दी में, नए पुराने, लाइब्रेरी में कितना फिक्शन है, मातत्व शयातीन में सब कुछ ले आए। उसमें फैशन के नाम पे बेहूदगी है, गाने हैं, फिल्में हैं, कुछ हैं, हर वो चीज़ ऑडियो वीडियो फॉर्म में ज़रा उसका नंबर काउंट करके लाए, गिनिएगा। मेरे घर में कितने कुरान हैं, उसमें सब कुछ ले आए, तफसीरें, हदीसें, ब्रोशर्स, सीडीज, ऑडियोज, वीडियोज, व्हाट्स एवर, डीवीडीज, और साथ ही दूसरी तरफ आपने करना है, पता लग जाएगा कि आज हम कहाँ लगे हुए हैं, रहमतुन नास किधर जा रहे हैं। दिल से किताब का लगाव ही खत्म हो जाता है, दीन अट्रैक्टिव ना रहा। और दीन भी आज उम्मत मुस्लिमा कौन सी सीखती, जिसमें मजा आए। आज बड़ा मजा आया, मुझे तो कोई कह दे ना आज बड़ा मजा आया तो मेरा दिल बैठ जाता है कि अल्लाह रहम करे मैंने आज कोई ज्यादा कहानियां सुना दी हैं, या मैंने आज इनको कोई रवायतें सुना दी, क्या हो गया इनको, क्यों मजा आया, ये कोई मजे की जगह है। मजा लेना है तो आप पिकनिक स्पॉट्स पे जाइए, मजा लेना है होटल्स में जाइए, बाजारों में जाइए। आज हमारा गम क्या है, जाते कहते नहीं गए थे वहां मजा ही नहीं आया, नहीं वहां बातें नहीं कर सकते मजा ही नहीं आया, वहां बच्चे, कुछ जगहों में ऐसे भी लोग कहते हैं बच्चे शोर कर रहे थे मजा ही नहीं आया, ठीक है वो तो मैं मानती हूँ कि डिस्ट्रेक्शन होती है, तवज्जो नहीं होती, लेकिन जहाँ सारे रिसोर्सेस मौजूद हों तो फिर मजा ना आए तो समझ लीजिए कि आप हिदायत लेने नहीं गए, कुछ और लेने गए। और जब आप कुछ और लेते हैं तो फिर आप किताब नहीं ले रहे होते, ये सच है। शैतान यूं ट्रैप करके हमें लेके जाता है कि अल्लाह की पनाह। बनी इसराइल के साथ इन आयतों को कैसे रिलेट करें, हमने बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ी थी कि बनी इसराइल का जब जवाल शुरू हुआ तो आपको बताया कि इनके ऊपर बुख्त नसर बादशाह ने हमला किया, याद है, 586 BC, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 586 साल पहले बाबुल शहर में बनी इसराइल गुलाम बना लिए गए। ये सारी बातें हो गई हुई हैं, पीछे सिर्फ दोहरा रही हूँ। बेबिलियंस या बाबुल शहर के नाम पे, इराकी कह लीजिए, इराक का दारुल खिलाफा गालिबन, जब ये वहाँ गए बनी इसराइल जो उस वक़्त के मुसलमान थे, तो वहाँ के हालात क्या थे कि बाबुल में जादू बड़ा आम था, लोकल लोग जादू में इतने ज़्यादा थे कि जब बुख्त नसर के हाथों ये पिटे उधर गुलाम बने तो पब्लिक में, जो वहाँ के लोगों में आम रिवाज था, उसकी वजह से इनके अंदर भी जादू आ गया। ठीक है, ये इनकी अपनी कहानी थी। इतना ज़्यादा इनके अंदर जादू आ गया कि बड़े बड़े काम जादू से करने लगे। अब यहाँ से जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आता है, अल्लाह ताला ने इनको कुछ ऐसे मिरेकल्स दिए हुए थे, मसलन हवा इनके हुक्म से तेज़ी से चलती थी, रुकती थी, कहीं जाना होता तो हवा हल्के हल्के इनको ऊपर ले जाती, और फिर जब चढ़ते तो ऊपर खूब तेज़ होती, फिर जब उतरना होता तो जहाज़ हल्का होता है, जैसे इस तरह होती ये चलते। अब ये बड़ा मुझसे लगता है, जिन्नात इनके ताबे थे। हुआ क्या कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक खबरें पहुंची कि लोगों में जादू बड़ा आम हो गया, और जादू करने कराने के अंदर जिन्नात भी शामिल होते थे। हज़रत सुलेमान ने एक हुक्म दिया, एक ऑर्डिनेंस पास किया कि सारे शहर से जादू का फिक्शन जमा करो, किताबें वगैरह, दिस एंड दैट। जब उनके हुक्म से वो सारी किताबें जमा की गई ना, तो हज़रत सुलेमान ने सोचा कि ये किताबें कहीं फिर इनके हाथ ना लगें। उन्होंने अपने तख्त के नीचे जगह खुदवाई और सारी किताबें उसमें डंप करवा दी, और ऊपर से पैरेलल करा दिया। शैतान ये चीज़ देख रहा था। अब थोड़े अरसे के लिए थोड़ा सा जादू का मामला भी दब गया। अल्लाह का हुक्म देखिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। जब उनकी डेथ हुई तो शैतान उस शहर के लोगों के पास गया और उनके दिल में ख्याल डाला कि हज़रत सुलेमान नबी नहीं थे, बादशाह थे। आज भी यहूद जो है ना, हज़रत सुलेमान को किंग सोलमन कहते हैं, प्रॉफिट नहीं कहते, कहते हैं कि ये बादशाह थे। और दूसरी बात है, ये जो मौजज़ात है, कहते हैं ये जादू के जरिए करते थे। लोगों ने कहा तौबा करो, इतनी बड़ी बात करते हो, शुरू में यही कहा होगा ना, कहा नहीं इधर आओ मैं तुम्हें सबूत देता हूँ, मेरे पास सबूत है। कहा अच्छा क्या, लोगों को लाया, कहा इनका तख्त खोदो, जब तख्त खोदा तो नीचे वो किताबें थी। छुपाई हुई वो बच्चों से थी, देखने में लगा कि आप खुद पढ़ते हैं, राइट। बस ये मंजर जब आया तो यहूद के अंदर नस्ल दर नस्ल ये बात मारूफ हो गई कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर थे, यहां तक के मदीना का दौर आ गया। ये बात अल्लाह के नबी तक आ गई। अब अल्लाह का एक नबी जिस पे जादू का इल्जाम लगा, और आपको पता है कि कितने हजार साल बीच में गुजरे, हजरत सुलेमान का दौर इधर है, आपको अंबिया का प्रॉफिट दिखाएंगे तब खुद देख लेंगे, वो तो बनी इसराइल के अरूज के नबियों में से थे, उसके बाद इतना दौर गुजरा, फिर ये हजरत ईसा का दौर आया, फिर बीच के खाली दौर गुजर के हम तो यहाँ खड़े थे। अल्लाह के नबी के दौर में ये बात जब आई कि हजरत सुलेमान जो थे वो जादूगर थे, बहुत बड़ी बात थी। अल्लाह ने ये रुकू जो आयतें आज ईद पढ़ रहे ना, ये आयतें नाजिल करके हजरत सुलेमान की बेगुनाही साबित कर दी। आप कुछ ना करें, आप पे इल्जाम लग जाए, अल्लाह आपकी बेगुनाही साबित करेगा। यहां से ये पता चलता है, ये जो हम लोगों को कहते रहते हैं ना, मैंने अल्लाह की कसम ये नहीं किया, फिर आप रोते हैं, फिर हिचकी बांधते हैं, फिर शर्मिंदा होते हैं, क्या करते हैं, मुतमईन हो जाए, बस अल्लाह पे मेरा मामला है, अपना मामला अल्लाह पे, इन्ना मशकु बसी व हुस्नी इलल्लाह, मैं अल्लाह पे अपना मामला डालता हूँ। तो ये सारी आयत जो है ये हुई। फिर बीच में हारूत और मारूत का किस्सा हमने पढ़ा, ये कौन थे इसके बारे में इख्तलाफ है। बस आपके मेरे लिए अभी तक इतना काफ़ी है कि ये दो फरिश्ते थे, जब बाबुल शहर में जादू बहुत आम हो गया तो अल्लाह ताला ने इनको लोगों की एक आजमाइश बना के भेजा, और ये लोगों के पास जाते और इनको जादू करना कराना आता था। जब लोगों के पास से जाते हैं तो लोग इनसे कहते हैं हमें जादू सिखाएं, तो ये कहते थे देखो हमसे ना सीखो, हम तो तुम्हारी आजमाइश के लिए आए हैं। तो ये जिद करते, इसरार करते, जब जिद और इसरार करते तो वो इनको जादू सिखा देते, तो जब जादू सिखाते तो फरिश्ते तो अल्लाह के हुक्म से कर रहे थे तो उनको तो कोई पकड़ नहीं, लेकिन उन लोगों की पकड़ हो जाती। इसका तذकरा बीच में आता है, क्या पता चला कि जब किसी को अल्लाह ताला आजमाता है ना तो बातिल चीज़ों की तरफ उसको डाल देता है। इसलिए अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं कि ये सारा मामला जो बनी इसराइल की हिस्ट्री में आम होता गया, असल इसकी क्या थी कि ये कौम जो है इस चीज़ों के पीछे पड़ गई। और आज तो आप कहते हैं ना, अच्छा ये फरिश्ते उतरे थे हारूत और मारूत के नाम पे, और आपको पता है कि वो वहाँ उस दौर में लोगों को फरिश्ते दिखते थे? नहीं, वो बाबों की सूरत में थे, वो ज्योतिषी, आमिल नजूमी, मिनटों में तैयार, हर मुश्किल का हल आपके महबूब आपके कदमों में, सास से जान छुड़ाएं, बहू को पीछे करें, उन्होंने वहाँ अपनी गद्दियाँ लगा ली। आज हमारे यहाँ भी ये मारूफ है, बाबा जी करनी वाले, आमिल नजूमी। पाकिस्तान में आप जरा पंजाब में एक शहर से दूसरे शहर रोड पे ट्रेवल करें तो आपको चूने गड्ढे से लिखी हुई दीवारों पे मिलेंगी, आमिल नजूम आपकी हर मुश्किल हल, शिर्क अस्तगफिरुल्लाह, एक हफ्ते में इलाज, ये कर दिएगा हकीकी तौर पे ये होगा, जहाँ चाहें वहाँ शादी कर लें। तो आप बताइए कि अगर जादू से सब कुछ होता तो आज तक हमारे मुल्क में हालत ना बदल गई होती? बिजली का मसला तो हल करवा लेते जादू से, सोचिए अगर जादू ही सब कुछ कराता तो सबसे पहली बात है कि जादूगर साहब आपका क्या हाल है, आप सारा दिन शहर की खाक क्यों खाते हैं? वो एक बाबा जी थे ना फाल निकालने वाले, वो कहते थे आप फाल निकलवाएं आपका काम होगा, और फिर पैसे लेते होंगे उसके। तो एक आगे बंदा ऐसा ही होगा बेचारा, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला, जब वो फाल निकाली पूछा भाई क्या सवाल है का, ये बताओ कि ये तोता पूछता है कि इस बाबा जी की किस्मत कब संवरेगी, जो पिछले 10 साल से लिद वाली सड़कों पे गंदी रोड्स पे बैठे हुए लोगों की किस्मत के हाल बता रहे हैं। ये हालात हैं। आज आप देखिए कि हम दूसरों की तो बात करते हैं क्योंकि यहूद की बातें सुन रहे हैं, यहाँ एक हल्की सी बात नोट कर लें, अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया नबियों पे क्यों? कल के सबक में दो चीज़ें पढ़ी थी, फरीकन तक्तुलून, पहला इन्होंने नबियों के सर रवैया क्या अख्तियार किया, कत्ल, जिसने इनको इनकी ख्वाहिशों से रोका का केले खत्म करो, काम खत्म। दूसरा कज़ब, तुम तकजीब, हम नहीं मानते पीछे हटो। आज तीसरा हम क्या पढ़े, इल्ज़ाम तराशी। सवाल पैदा होता है कि यहूद अपने नबियों पे इल्ज़ाम क्यों लगाते थे? क्वेश्चन वैसे है तो जवाब समझ लीजिए कि वक्त के साथ साथ इनके उलमा में जब खराबियां आईं तो उन्होंने दीन में खराबियां शुरू कर दी। जब दीनदार तबके के ऊपर खराबियां आईं और लोगों में उनके ऊपर बातें उठीं तो इन्होंने सोचा कि लोग हम पे बातें कर रहे हैं, चलो नबियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। जब नबियों पे इल्जाम लगेगा तो लोग कहेंगे अच्छा जी इनके तो नबी ऐसे थे, तो फिर उलमाए कराम दीनदारों को हम क्या पूछें। यानी लोगों की तवज्जो खुद से हटा के नबियों पे डाल दी ताकि लोग इनसे इनकी बातों को ना पूछें। और आज भी अल्लाह ना करे आप कभी पढ़ें, लेकिन पढ़ के देखें आज की बाबुल में हजरत सुलेमान के बारे में क्या कुछ है। आप हवाले लेना चाहें तो मिल सकते हैं कि सुलेमान का दिल अल्लाह की याद से फिर गया। और सुलेमान जब बूढ़ा हो गया तो इसकी बीवियों ने ऐसी चीजों में इसको उलझाया कि ये खुदा से दूर हो गया। नबियों के शराब पीने की बातें इनकी किताबों में, बरहना हो के हजरत नूह पे इल्जाम आता है, बेटियों से जिना करने के इल्जाम आज किताबों में इनकी मौजूद है। आप कैसे कह सकते हैं कोई बात नहीं, हमारे बच्चे बाइबल ही पढ़ते हैं ना एवरी सैटरडे या संडे स्कूल में, नो प्रॉब्लम। कुरान तो पढ़ाया नहीं गरीबों को, बाइबल पढ़ पढ़ के उससे दीनदार हो जाएंगे। पढ़ के खुद देखें कि क्या हालात है। तो इस तरह से वो दूसरों पे लाते, वो तो कल कहते थे सुलेमान ने कुफर किया, आज अफसोस है मुसलमान क्या कहते हैं। क्या आपने कभी नक्शे सुलेमानी का नाम नहीं सुना? किस मुल्क में सुना होगा आपने? अपने पाकिस्तान में सुना होगा। आज जब मुसलमान नक्शे सुलेमानी कहते हैं, तोतागिरी, फालगिरी, नक्श, जंतर मंतर, छू मंतर, ये सब कुछ क्या है? लिख लीजिए एक बात कि किताब उतरती है हिदायत के लिए। जब कौमों में हिदायत नहीं रहती, जब किताब मैनुअल ऑफ रेवोल्यूशन नहीं बनता, कुरान क्या तब्दीली का सफर है। जवाल आता है तो फिर इसको घोल घोल के पिलाते हैं, इसकी आयतों को पानी में घोल दो। कुरान आखरत बनाने के बजाय मजीद दुनिया हासिल करने का जरिया बन जाता है। गिनती, आपकी माँ कब पैदा हुई, आप कब हुए, आपकी बर्थडे क्या थी, सितारे, जोश, ये सब कुछ ऐसा है। और आप देखिए कि कभी आप कोई अखबार उठा के देखें उर्दू का, नीचे ऐड होते हैं काली ताकतों के माहिर, खवातीन के लिए पर्दे का इल्जाम है, पर्दे के पाबंद और लोगों को जादू सिखा रहे हैं, वजीफे, इस्तखारे, जादू शिकन प्रोफेसर, दुखी बहन भाई खुश ना हो, नाराज ना हो, और वो जो मौलवी और प्रोफेसरों से लुट चुके हैं वो हमारे पास आए ताकि हम उनको अब लुटें। ये हालात हैं आज उम्मत के, तो अल्लाह ताला ने इसी का किस्सा खोल दिया। अब यहाँ तो बात पूरी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी आयत है जिसमें सिर्फ उनकी मतलब इस्लाह की बात है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि जादू होता क्या है। आप सबके भी जहन में बात है ना कि जादू क्या होता है। तो आप देखिए कि पहली बात है कि जादू है, हकीकत पसंदी से कहिए कि जादू हकीकत है। और जादू है क्या? गैर मरई कुव्वत है। देखिए अगर मैं अपने हाथ पे हाथ लगाऊंगी ना, ये देखिए तो मुझे तकलीफ हुई है ना। कोई जब किसी को मारता है ना तो उसके जिस्म को चोट लगती है, ठीक है, इसी तरह रूह पे चोट लगने का नाम जादू है। बात बस है, फिजिकल जिस्म को फिजिकली टच करते हैं तो मार पड़ती है, तकलीफ होती है, रूह गैर मरई है ना, नजर नहीं आती। तो जादू करने लिए करते क्या है? पहले तो सबसे पहले ये जिन्नों को खुश करते हैं, शयातीन को खुश करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है? इनको हर खिलाफे शरीयत काम करना पड़ता है। मसलन गंदे रहते हैं, जुनाबत में रहते हैं, औरतों के पीरियड्स के ब्लड के साथ कुरान की आयतें लिखते हैं जी, बाथरूमों में जाके कुरान के सफ़े ज़मीन पे रख के उसके ऊपर चलते हैं। आप अगर चाहें तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊं अगर आप रात को डरे ना। जादू सीखने के लिए हर वो काम करना पड़ता है जो शैतानों को खुश करे, और जिसको अपने कब्जे में ऐसे शैतानी जिन करने होते हैं तो वो कब्रिस्तानों में जाकर रातों को चिल्ले काटते हैं, 40 दिन तक एक खिसार खींच लेते हैं बीच में खुद। आप करेंगे तो नहीं? पूरा बता दिया तो करने ही ना लग जाए जिन काबू करें, कि बच्चे तो काबू में नहीं आ रहे, मियाँ नहीं आ रहा, जिन काबू कर लें। सूरत जिन कहते हैं पढ़ते हैं, और उसको भी शयातीन डराते हैं। जो डर गया जिन उस पे सवार, और जो ना डरा फिर वो जिन्नों को अपने हाथों में कर लेते हैं। मोक्कल का नाम सुना होगा। फिर वो जाके ऐसे लोगों के पास भेजते हैं कि जाओ इनको देखो, खूबसूरत लड़कियां जो पैन ओढ़ के हैं या खुशबुएं लगाती हैं या बाहर जाती हैं, ये जिन्नात जाके उसके ऊपर असर कराते हैं, पता चलता है लड़की को जिन जिमट गए। सुना होगा ना, कहानियां बहुत सारी मारूफ हैं, हकीकी वाक्यात मौजूद है। मैं एक ऐसी बच्ची को जानती हूँ कि मेरे वालिद के दोस्त की बेटी थी, बिल्कुल यंग ही होगी, जो हमारी एज थी वही उसकी थी या उससे भी शायद थोड़ी बहुत बड़ी होगी। हम उसकी शादी की तैयारियों में थे, एक दिन खबर पता चल गई कि बच्ची की आवाज़ बंद हो गई। मैं उसकी आवाज़ सुन चुकी थी पहले से एक दफ़ा फ़ोन पे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, पता क्या चला, डॉक्टर कह रहे हैं सब ठीक है, सारे साउंड सिस्टम ठीक है, शादी पोस्टपोन हुई। जब शादी पोस्टपोन हो गई तो बाद में फिर जो एक लंबी कहानी की शॉर्ट वर्जन ये है कि जब उसको दिखाया गया किसी जो लोग इस तरह के तोड़ भी करते हैं तो उन्होंने बताया कि इस लड़की पर एक जिन है और ये छोटी थी अभी यानी बिल्कुल अर्ली यंग एज थी ना तो ये कहीं बाहर ऐसी खुली जगह पे थी और वो जिन इस पे आशिक हो गया। याद रखिए जब हम खुशबुओं में बसे हुए बाहर जाते हैं ना तो जैसे ये दुनिया के लोग आशिक हो जाते हैं तो जिन्नात भी होते हैं। वो जिन इसको कुछ नहीं कहता था, उन्होंने बताया कि ये शुरू से इसके साथ था, फिर वो मारा निकाला कुछ भी कहानी हुई लेकिन वो जब पहले उसने उसको कुछ नहीं कहा, अब जो ही उसको पता चला कि इसकी शादी हो रही है तो उसने कहा मैंने इसकी शादी नहीं होने देनी क्योंकि आई लव हियर। और फिर वो जब कितनी कहानियों से निकले पलटे, फिर काफी अरसा हो गया इस तरह बातें, तो एक दफा बात मुझे याद है कि मैंने उनके घर फोन किया, ऐसी कोई वजह होगी, तो उधर से बड़ी अच्छी आवाज आई तो मैंने कहा कौन, तो उसने नाम लिया, फिर उसका इलाज हुआ, बिल्कुल ठीक हो गई, वो जिन निकल गया उसके अंदर से, मारा पीटी खत्म हुआ और अब वो बिल्कुल उसके शिकंजे से आजाद है। मैंने खुद उस लड़की के साथ बैठ के बात की हुई है, यानी वो सुनती सब कुछ थी। अमूमन आप देखिए जो बोलते नहीं है वो सुनते भी नहीं है ना, वो सुनती थी, उससे जाके हम बातें पूछते हाल चाल क्या, तो वो बिल्कुल साथ पेपर पे लिख के वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ दिस एंड दैट, लेकिन बाद में बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये हकीकत है, इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए अपने आप को ठीक रखे। हत्ता कि ये जो जादू करते कराते हैं ना, ये सितारों की पूजा करते हैं शैतानों को खुश करने के लिए, शिरकिया मंत्र पढ़ते हैं, कत्ले नाहक करते हैं, जिना बदकारी गंदे काम करना ऐसा रहते हैं, कहते हैं कि औरतों को खास तौर पर इंतजार करते हैं कि नापाकी के दिन आए तो फिर उनसे ये काम कराया जाता है। करें क्या, जादू तो नहीं करना कराना। इंशाल्लाह दो तरीके हैं, एक ये कि जादू हो गया और एक ये कि अभी जादू नहीं हुआ। इस्लाम का मिजाज ये नहीं है कि पहले कोई मर जाए तो फिर एम्बुलेंस में डाल के उसको ले जाओ, घड़े खोदो, कोई गिरे टांग टूटे फिर जाके उसका इलाज कराओ। इस्लाम कहता है सद्दे ज़राए, वो सारे मीन्स खत्म कर दो जिससे तुम पे गलत हो काम, अपने आप को अकीदे में पुख्ता करें। सबसे बड़ी चीज जिसका अकीदा पुख्ता है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस पे जादू का असर नहीं होता क्योंकि शैतान का काबू नहीं आएगा। फिर फराइज की पाबंदी, 5 वक्त की नमाज, रोजा, दीन, अपने आप को पक्का रखें। फिर नेक्स्ट थिंग क्या है कि अपने आप को गुनाहों से दूर करें, कबायर से दूर रखना, और कबीरा सबको पता है, कम अज कम मोटे मोटे 2-4 लफ्ज, जिना बदकारी, ऐसे लोग जो ऐसी गंदगियों में पड़ जाते हैं ना वो शैतानों के कब्जे में होता है। पूरे शऊर से यहाँ बैठ के आपको कह सकती हूँ कि ये जो डिप्रेशन का लफ्ज है ना आज के दौर में, और फनेटिक और पैनिक अटैक्स, ये जादू की एक किस्म है। हमेशा कोई नहीं कर रहा होता, हम अपनी बदकरदारियों से जिन्नात को अपने ऊपर ले आए होते हैं, कुरान के साथ उसका इलाज करें। ये अक्सर आप सुनते ही रहते हैं ना हर हफ्ते साथियों की कि आप मेरी तकलीफ ठीक हो गई है, अब मैं बेहतर महसूस करता हूँ या करती हूँ। वजह क्या होती है कि हमें नहीं पता होता लेकिन बाहर की ये मखलूक हम पे असर करती है। अब जब यहाँ 4 घंटे कुरान पढ़ना सुनना, घर जाके पढ़ना, तर्जमे याद करना, वीकेंड्स पे दोहराइयाँ करना, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों के असर से बंदा निकल जाता है। ठीक है, फिर सुबह शाम की दुआएं ना छोड़ें, ये बहुत लाजिम है। हर किस्म का हराम काम छोड़ दें, सगीरा गुनाहों से तौबा करें, छोटे गुनाह जो करते थे, जाहरी और बातनी तौर पे साफ रहे, रोज नहाएं, बाल बांधें, अपनी ब्यूटी का या अपने हुसन का इजहार ना करें। किसी को शक होता है ना मेरे ऊपर ऐसी नकाहत है, मैं बीमार महसूस करती हूँ, सूरत बकरा की आखिरी आयतें पढ़ें, कुल पढ़िए, नबी सल्लम पे भी जादू हुआ था, आगे जाके सुना देंगे आपको इंशाल्लाह। फिर इसी तरह मसनून दुआओं का अहतमाम करें, घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हदीस में आता है कि जब ये बंदा पढ़ता है तो फरिश्ता कहता है खुदी तवक्कुफी तवक्कीता, तुझे हिदायत दे दी गई, तू बच गया और तुझे अल्लाह ताला ने किफायत कर दी, तो ये हम खुद बचते हैं। फिर इसी तरह अजवा खजूर खाए, 7 खजूरें सुबह जो खा लेता है अल्लाह के हुक्म से उस पर जादू का असर नहीं होता। किसी को मुसीबत में देखें, बीमारी में, दुख में, डिप्रेशन में, बीमारी में, तो वो दुआ पढ़ें जो अल्लाह के नबी सिखाते हैं, मैं बोलती हूँ आप साथ पढ़ लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
आफानी
आफानी
मिम्मब्तिलाका
मिम्मब्तिलाका
बिही
बिही
वफद्दलनी
वफद्दलनी
अला कसीरिम
अला कसीरिम
मिम्मन
मिम्मन
खलका
खलका
तफदीला।
तफदीला
इसका मतलब यह है कि सारी तारीफें उस जात के लिए है जिसने मुझे आफियत दी उस चीज से जिसमें उसने तुझे डाला, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस सारी चीज़ों से निकाल दे, यानी मैं मुबतला का भी ही व फनतनी अला कसीर मन हलका तफ्तीला, कि अल्लाह ने मुझे बहुत सारों से अच्छा रखा है। ठीक है, फिर इसी तरह उस बिल्ला पढ़ना, ये सब करना। अब बस लोग कहते हैं कि अच्छा आयतुल कुर्सी पढ़ी भी थी फिर भी ऐसा हो गया, कभी कहते हैं ना, तो बाद जब आप देखिए कि चौकीदार के होने के बावजूद भी खराबी आ जाती है और हमारी तवज्जो बटी होती है। फिर इसी तरह ये है कि गीबत, बुराई, चुगली, इन सब चीज़ों को दूर करें। आखिरी बात रह गई कि हो गया जादू, अब क्या करें? किसी के पास, किसी आमिल के पास जाने के बजाय ख़ुद कुरान पे अमल कर लें, आमिल बन जाएंगे आप। खुद इलाज करें, शरई तरीके पे, मसनून तरीके से इलाज करें। जान चली जाए, ईमान ना चला जाए, क्योंकि ईमान के सौदे बाज़ दफ़ा करते हैं। फिर तरीके भी मौजूद हैं, इसके ऊपर आप सुन लीजिए, एक लेक्चर भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, एक हम ब्लॉग पर डालेंगे पेज, जिसमें इंसान अपने आप को शरई तौर पर किस तरह तहफ़ुज़ में ले सकता है, इंशाल्लाह ताला आप उससे फ़ायदा उठाएं। फिर इसी तरह बेरी के पत्तों को कूट कर उसके पानी के अंदर गुसल देना, और जिसके ऊपर ऐसा असर है उसको नहलाना, और नज़रे बद का इलाज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। मैं अक्सर ऐसी चीज़ें अपने क्लास में नहीं शेयर करती, क्योंकि आधी बात सुननी आधी ना सुननी से फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है, लेकिन यह है कि दुआ ये करें कि हम इन सब चीज़ों से बच जाएँ। और सूरह तौहा में भी आप पढ़ेंगे, और आज भी इस आयत में अपने दो कम अज़ कम और तीन और भी नोट किए हैं रेफरेंसेस, जिससे पता चलता है कि जादू कुफर है। जादूगर के लिए शरई हुकूमत होगी तो हुकूमत उसको कत्ल कर सकती है, यहाँ तक है उसका जो जादू करता है वो इस्लाम से निकल जाता है, उसके दिल में ईमान नहीं रहता। और इन सारी चीज़ों से बचने के बाद अब अगर इंसान अपने आप को बचाए तो क्या करे? आखिरी आयत में देखिए, वलवन्नहुमा आमनू, और काश के वो ईमान ले आते। मुफसरीन आयत के इस हिस्से में कहते हैं कि जादू करने कराने वाले, यानी जिसने माजी में कहीं भी कोई ऐसा काम किया, अब उसको तजदीद ईमान करनी पड़ेगी, फिर कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह अगर ज़िंदगी में किसी पे किया कराया तो माफ़ कर दे, और अब क्या करे? वत्तकू, बचो, अब तकवा इख्तियार करो, गुनाहों से बचो। ला मसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, अल्लाह की तरफ से खैर पाएंगे, बहुत बड़ा अजर पाएंगे। लौ कानू यालमून, काश के वो जानते होते। कैसे? यानी जादू के बाद अब दोबारा ईमान लाएं, अपने आप को पाक साफ करें, और इन सब बातिल चीज़ों से बचा लें, और अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तू किसी को इस आजमाइश में ना डालना। बाकी रह के अपना ईमान इधर उधर ज़ाया करना, ख़राब करना, ये बहुत ही तकलीफ़ की बात है। यकीन रखें कि मेरे पर किसी का असर नहीं होगा, मैं इन सारी चीज़ों से बच सकती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातिल चीज़ों से बचा के रखे। अच्छा, जो शख्स इज्तमाही कामों में, दीन का काम में, या अपनी ज़िंदगी में इज्तमाहीत लाता है ना, वो भी ये जादू टोनों से फारिग है। आपको वक्त ही नहीं मिलता, मसरूफ़ करें ख़ुद को, ये भी एक हल लिख लीजिए। फिर इसी तरह शैतान हमारे बीच में नमाज के दौरान भी आता है, सफ़ों के बीच में फ़र्क जो होता है उसकी वजह से शैतान आ जाता है। शक शुबात से पाक करना है, कुछ चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे देख लेंगे, कुछ मसनून जो अमल हैं वो भी होते हैं इसमें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को अपने ईमान की हिफाजत करने वाला बना दे। यहाँ पर सबक पूरा हुआ। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।